हम लोग गुफ्तगू करेंगे बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, पहले से अगर पता चल जाए तो बहुत बेहतर होता है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम लोग डॉक्टर फायजा मुमताज़ से। बहुत बहुत खुश आमदीद और सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत
वालेकुम
में।
अस्सलाम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद आप तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आप ब्रेन ट्यूमर बच्चों में, एक तो ख़ुद ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बताइए, और ये कि ये ट्यूमर बाज़ लोग कहते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाया जाए, फिर इंशाल्लाह आएंगे बच्चों की तरफ।
जो ट्यूमर है जिसको हम उर्दू में रसौली भी कहते हैं, ये दरअसल एक नॉर्मली जो होता है हमारे जो जिस्म के अंदर खुलिए होते हैं, वो एक तरीक़ेकार अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो तकसीम हो रहे होते हैं। लेकिन जो ट्यूमर होता है इसमें इबनॉर्मली वो जो है तकसीम होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको मतलब जब जो जिस्म के अंदर खुलियात मौजूद हैं वो इबनॉर्मली डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम ट्यूमर या फिर रसौली कहते हैं। आगे से मतलब जो ट्यूमर्स हैं डिफरेंट इकसाम के हैं, मुख्तलिफ इकसाम के हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं या हम उनकी दर्जाबंदी करते हैं। जैसे वो या तो बेनाइन होते हैं या फिर मेलिग्नेंट होते हैं। बेनाइन का ये मतलब होता है कि वो किसी एक ही जगह पे, किसी एक ही आपका जो जिस्म का हिस्सा है वहाँ पे रसौली की शक्ल में या ट्यूमर की फॉर्म में वहाँ पे ही रहते हैं, और वो बाकी जिस्म के जो आपके ऑर्गन्स हैं या अज़ा हैं वहाँ पे नहीं जाते हैं, या फिर वो खून के ज़रिए मुंतकिल नहीं होते हैं बाकी जगहों पे, वो एक जगह पे लोकलाइज रहते हैं या वहीं पे ही रहते हैं। और ये इजी होते हैं, इनको जिस्म से रिमूव करना इजी होता है और ये ट्रीटेबल होते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट होते हैं वो ये एक मसलन जहाँ पे वो बन गया ट्यूमर, जहाँ पे रसौली बन गई, वो फिर दूसरे अज़ा में या खून के थ्रू या फिर जो आपके डिफरेंट बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं उनके थ्रू बाकी अज़ा जो हैं जिस्म के उनके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उसको जो है ट्रीट करना भी मुश्किल है, और जो सर्वाइवल है पेशेंट की या जो बचाव है वो काफ़ी कम होता है। तो इस वजह और जो मिलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको ही हम कैंसर कहते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बच्चों में किस तरह से वजूद में आते हैं, एक तो ये खुद बताइए दिमाग में, यानी कौन से खुद दिमाग के सेल्स होते होंगे जो उस वो शक्ल इख्तियार कर लेते होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये, और क्या ये चर्बी का एक तौदा हो जाता है या किस शक्ल में होता
नहीं,
है?
देखें जो एक आम तौर पे जिसको लोग कहते हैं कि मसलन आपके कोई जिस्म यहाँ पे, हाथ पे, टांग पे, कहीं पे भी बाज़ुकात जो आपके लिपिड्स होते हैं जो कि मूव कर रही है ना हर चीज़
जी
बॉडी में,
जी
फ्लूइड हैं, ब्लड है उसके अंदर, तो बाज़ुकात ये होता है कि चर्बी भी इकट्ठी हो जाती है और वो एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसको हम ट्यूमर नहीं कहते हैं। या खैर आगे पहले चूंकि मैं बता चुकी हूँ कि कैंसर तो फिर उसकी अगली फॉर्म है ट्यूमर की, लेकिन उसको जो है आप इजीली थोड़ा सा उसका एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो एक कट देते हैं और वो क्योंकि वो एक चर्बी होती है जमा हुई हुई तो वो रिमूव हो जाती है, उसका
अच्छा।
प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि ब्रेन जिस तरह बाकी पूरे जिस्म के अंदर खुलिए होते हैं, दिमाग के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, और उनकी जब एब नॉर्मल ग्रोथ होती है या डिवीजन होती है तो ब्रेन में भी ट्यूमर बन जाता है, क्योंकि ब्रेन का हम बहुत से यानी के पार्ट्स हैं इंडिविजुअली, तो टाइम इतना नहीं कि मैं उनका बता सकूं, लेकिन आप ये समझ लें कि जो यानी कि ब्रेन के सेल्स होते हैं वो नॉर्मली जब ग्रो करते हैं तो वो ब्रेन में भी ट्यूमर एक बन जाता है।
बच्चों का क्या सिलसिला होता है कि बच्चों में किस तरह से वजूद में आता है और कौन कौन से बच्चे ज़्यादा खतरे की जद में होते हैं?
असल में जो ट्यूमर या कैंसर है इसकी कोई लॉजिकल रीज़न जो या कोई ऐसी वजह अब तक डिफाइन नहीं हो सकी है जिसको हम कहें कि अगर अगर ये आप नहीं करें पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान, कुछ तो एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं लेकिन कुछ ये कि उस तरह से वेल डिफाइंड कोई भी रीज़न या कॉज इसका नहीं है अभी तक कि जिससे हम कह दें कि इस वजह से जो है इसमें ट्यूमर बन गया या कैंसर बन गया। बस एक एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल्स की वो, लेकिन जो इसकी वेल डिफाइंड या ख़ास तौर पे वजूहत है उनमें जो बच्चे रेडिएशंस अंडर रेडिएशन थेरेपी आते हैं किसी भी वजह से, मतलब कैंसर नहीं है उनको कोई किस्म का ट्यूमर नहीं, किसी और बीमारी की वजह से, मसलन वो किसी रेडिएशन से गुजरते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते हैं, मसलन जो एस्बेस्टॉस है या वाटर के अंदर आर्सेनिक है आपका, सल्फर है, अगर वो बच्चे जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पीने के पानी के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मौजूद होती हैं, तो उन बच्चों में भी बड़ों में भी सब में ही कैंसर का रेशो जो है, रेट जो है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो ये तो इस तरह ये वाले फैक्टर्स तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इनको हम कहते हैं, और कुछ तो अदर जो फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक होते हैं।
डॉक्टर साहिबा, हमारे नाज़रीन में से एक ने पूछा है कि अगर अचानक और बग़ैर किसी वजह के गशी के बच्चों में गशी के दौरे पड़ते हों या बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, तो ये भी ब्रेन ट्यूमर की एक अलामत हो सकती है?
जो गशी के दौरे हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम की जो दमागी अमराज हैं उसमें तकरीबन हर एक में ये मेजर अलामत के तौर पे ज़ाहिर होते हैं। जो गशी का दौरा होता है या अनकॉन्शियसनेस होती है या उसे हम डिजीनेस या वर्टिगो कहते हैं, लेकिन अगर अगर वो डिपेंड करता है कि बच्चे को कितनी दफ़ा, मसलन एक महीने में कितनी दफ़ा वो उसकी ये कंडीशन होती है या एक हफ्ते में कितनी दफ़ा होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर बच्चे को यानी कि फ्रीक्वेंटली या बार बार ये गशी का कोई इस किस्म का हो रहा है, वर्टिगो, डिजीनेस या अनकॉन्शियसनेस, तो क्योंकि ये एक वाज़ह अलामत है कैंसर की, ब्रेन ट्यूमर की, तो उनको ज़रूरी तौर पे डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए अपने
जी,
डॉक्टर के साथ।
बहुत शुक्रिया
डॉक्टर साहब। एक चीज़ मेरे जहन में थी वो ये कि क्या ये बात हो सकती है कि मतलब माँ जो है बच्चे की पैदाइश से पहले, दो सवाल आते हैं दरअसल, ये कि किस उम्र में होता है ये, और ये कि इस बात का क्या इम्कान होता है कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है और माँ जो है वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बहरहाल बदन मुतासर हो जाता है, क्या हो सकता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो जाए उस बच्चे को?
पहली बात का तो ये जवाब कि ये मोस्टली जो बच्चे होते हैं मसलन जो 3 ईयर 3 साल के बच्चे होते हैं उसके अंदर हाई रिस्क होता है कि उनको हो सकता है, लेकिन और अगर किसी अंडर 3 ईयर्स किसी बच्चे को होगा, 3 साल के अंदर है वो बच्चा, तो वो बहुत सेंसिटिव केस होता है, उसको फौरन से जो है डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करना होता है। लेकिन दूसरा ये कि जो मोस्ट कॉमनली जो एज है, जो उम्र है, वो 6 से 10 साल है, मतलब जो ब्रेन ट्यूमर है वो ज़्यादातर 6 से 10 साल की उम्र में बच्चों में डायग्नोज होता है, और जो डिफरेंट किस्म की ट्यूमर आगे से इसकी इकसाम है वो इस एज में फ्रीक्वेंटली या ज़्यादा बार बार जाहिर होती हैं बच्चों के अंदर। दूसरी बात आपकी ये कि अगर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ किसी रेडिएशन प्रोसीजर से गुजरती है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी किस्म की भी रेडिएशन थेरेपी ममनू है, वो तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो असल में जो रेज होती हैं, जो शुआएं होती हैं, उनकी एक स्पेसिफिक मिकदार होती है जो हम पेशेंट को देते हैं, तो वो वाली रेज जो आपकी माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, प्रेगनेंसी में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी किस्म का टेस्ट। और ये कि अगर अगर वो कोई ऐसा जैसे बहुत कोई मतलब अंडर डेवलप्ड जैसे कंट्रीज़ हैं उनमें किसी को इतनी आगाही नहीं है और वो माँ उस प्रोसीजर से गुजर जाए उस वो वाली रेडिएशंस के, जो मसलन MRI वगैरह हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं, सीटी स्कैन या इस तरह की चीज़ें, तो एक्सरे नहीं कर सकते हैं, तो तब ये होता है कि फिर जो वो वाली स्टेज जिसमें न्यूरोनल डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, उसमें फॉल्ट आ सकता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप की जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो अपीयर होती हैं, लेकिन प्राइमरीली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये उस इस वजह से ब्रेन ट्यूमर नहीं बन जाता कि मतलब वो माँ को रेडिएशन किसी से गुजरी है और बच्चे में ट्यूमर आ जाए इस तरह, मतलब ये कि कोई और जेनेटिक डिफेक्ट बच्चे में आ जाएगा ब्रेन का जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से, उसके बाद उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर बन सकता है, जो कि उस बच्चे में वो डिजीज़ आ जाएगी कोई जेनेटिक, तो सेकेंडरीली उसके अंदर बच्चे के अंदर फिर ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है।
अच्छा, आपने जेनेटिक्स की बात की तो इसमें किस हद तक मिसाल के तौर पर कोई जैसे कजिन्स में ये चीज़ है तो एक बच्चे में इसका इम्कान बढ़ने लगता है या नहीं?
नहीं बिल्कुल, जेनेटिक इसकी रीज़न ये होती है कि पहले कोई जेनेटिक डिजीज़ बच्चे के अंदर आती हैं, रिस्क बिल्कुल बढ़ जाता है जब आपस में कज़न मैरिजेज होती हैं या फिर फैमिली एक फैमिली में एक डिजीज़ रन हो रही है, चल रही है, उसकी हिस्ट्री है उसमें, तो जब वो आप मतलब वो बीमारी फिर ये हो सकता है कि माँ बाप के अंदर वो रिसेसिव हो या जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि वो बच्चे के अंदर जाहिर हो। मसलन दादा को थी, माँ बाप को मे भी नहीं है, पर दादा को थी, दादा को नहीं है, माँ बाप को नहीं, लेकिन वो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर वो अपीयर हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसका रिस्क तो ऑब्वियसली हर एक जो जेनेटिक डिजीज़ है उसका रिस्क होता है बच्चे में अगर फैमिली के अंदर शादी हो।
अलाइम के बारे में बताइए कि कहाँ से वालदेन को पता चले, आमतौर से जो 2-3 साल का बच्चा जो उसको ज़्यादा वो नहीं होता है, तो किस तरह से पता चले खुदा खासा बच्चे को ये मसला दरपेश है?
जो सबसे पहली मेजर अलामत है, बच्चे को थोड़ा नज़र कम आने लगेगा ना, वो आँखों को यूँ करके देखेगा या फिर खड़ा होगा तो चक्कर आएंगे, खड़ा होगा चक्कर आएंगे, बैठ जाएगा ना, सर में हर वक्त दर्द रहेगा, ये भी एक वाजिया अलामत है इसकी। वर्टिगो जिसको हम कहते हैं कि बच्चा बैठेगा लेकिन उसको लगेगा उसका जो सर के अंदर है वो सारा ये सब चीज़ घूम रही है। वर्टिगो और जो डिजीनेस होती है उसमें यही डिफरेंस होता है, एक में लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें वो घूम रही हैं और दूसरे में लगता है कि आपका अंदर से दिमाग घूम रहा है लेकिन बाकी चीज़ ठीक है। और इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग जिसको मतली और क्या हम कहते हैं वो होगी बहुत, और ये है कि क्योंकि जो दिमागी अमराज हैं इनका आपस में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत मैच करती हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि एक एक जैसे क्वेश्चन भी यही था कि एक हफ्ते में कितनी दफ़ा ये सिम्टम्स आ रही हैं, एक दिन में कितनी दफ़ा इवन आ रही हैं, या फिर एक महीने में कैसे पेशेंट या कोई बच्चा या बड़ा है वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है इन सिम्टम्स का। और ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहती मूवमेंट की, मसलन हम खड़े हो सकते हैं, सीधे चल सकते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई ब्रेन ट्यूमर अपीयर होता है तो आपकी जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है या जो आपका बैलेंस तवाजन होता है वो लॉस हो जाता है। तो इस किस्म की अलामत अगर आप देखेंगे बच्चे के अंदर आ रही हैं, मसलन वो खड़ा होना चाह रहा है लेकिन वो गिर जाता है, तो ये एक बड़ी वाजह अलामत है कि उसको मे बी कोई ब्रेन कोई ट्यूमर डिवेलप हो रहा है। इवन जब स्टार्ट होता है नौजिया वॉमिटिंग, चक्कर आने और दिल का घबराना और तोज़न का, ये सब जो हैं ये मेजर और बहुत क्लियर अलामत जो हैं वो बच्चे में ज़ाहिर होती हैं।
ये कोई इसका तरीका होता है जैसे नॉन इन्वेजिव, जैसे हम शुआओं के मुख्तलिफ एक्सरेज या एमआरआई के ज़रिए पता न लगाएं, डॉक्टर जो है जब तशखीस के लिए जाएं तो पता लगे हाँ भाई इस बच्चे को हो गया है, ऐसी कोई चीज़ है या नहीं?
जो इसका डायग्नोसिस है उसमें तो वाज़े तौर पे आपको ये सिम्टम जो है कि मतलब जो हेडेक है नॉर्मली हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, जब आपको सर में दर्द होता है कितना भी दर्द होगा हर कोई उसको बर्दाश्त कर सकता है ना, या फिर अगर आप कोई पेन किलर खा रहे हैं तो आपको उससे फाका हो जाएगा सर की दर्द का, लेकिन जब जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से बच्चों में जब ये जाहिर होता है उसकी वजह से जो सर में दर्द होता है वो ठीक नहीं होता है वो, और उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो क्योंकि बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आप जब देखें कि बच्चा जो है वो दर्द सर के दर्द की वजह से उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो ये एक बहुत जो है ना अलार्म की तरह है कि आपके बच्चे आप फौरन इसके लिए जाएं, अपने मॉलिक से रजू करें और उसके लिए डायग्नोसिस के लिए जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी स्कैन, और सेकेंडली जो है अगर सिटी स्कैन में कोई नॉर्मेलिटी आ रही है या कोई ग्रोथ आ रही है, ट्यूमर आ रहा है नज़र पता चल जाता है सिटी स्कैन से, तो आप फिर उसके बाद एमआरआई जो है रिकमेंडेड होता है सिटी स्कैन के बाद। तो ये दो जो हैं यानी कि वाजिया टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए, और ये उतने चीप मतलब महंगे भी नहीं हैं, चीप हैं और अफोर्डेबल हैं। अगर आपके बच्चे में जो जैसे कि जो मैंने अलामत बताई उनमें से कोई आ रही है, आप जाएँ स्ट्रेट जाएँ अपने डॉक्टर से लिखवाएँ ये टेस्ट और उनको करवाएँ,
किसी भी यानी आम डॉक्टर से भी ये काम करवाया जा सकता है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों का भी सिलसिले में कोई सवाल हो, हम लोग यहाँ पर हैं कि जो मुख्तलिफ बीमारियाँ खुदा न खासा जो पेश आ सकती हैं उसके अगर उमूमी अलाइम और जो उसकी जो ख़ास खसूसियात जो होती हैं उसके बारे में अगर हम लोगों को इब्तदाई मालूमात हों तो तो बहुत मदद मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कोर्सेज जाके खसूसी करते हैं, मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट एड कोर्सेज होते हैं, इब्तदाई जो एड्स होती हैं उसके कोर्सेज करते हैं, उनको बहुत बहरहाल ज़्यादा आशनाई होती है। तो ये भी आप समझिए कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हम लोग एक बहुत ही इब्तदाई कोर्स आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी
हमारे एक नाजरी में से अहमद रमी साहब ने ये सवाल पूछा है कि जदीद इलाज जो ब्रेन ट्यूमर में आजकल आम हो चुका है, इस पर भी रोशनी डालें।
जी डॉक्टर साहब,
हम ट्रीटमेंट के ही पार्ट की तरफ आ रहे थे। इसमें जो जदीद इलाज है कैंसर का, कोई भी अभी वेल डिफाइन, मतलब हम हतमन नहीं कह सकते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो है तहकीक पूरी वर्ल्ड में जारी है, और जो मेन फोकस है रिसर्च का वो भी इस वक्त कैंसर थेरेपी ही बनी हुई है पूरी वर्ल्ड में। क्योंकि उस तरह नहीं है कि मतलब हम कह दें कि कोई ऐसी चीज़ हो कि हम जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां कि पहले वैक्सीनेशन करवा लें ताकि वो नहीं हो, या फिर अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ताहाल इस पे तहकीक जारी है पूरी दुनिया, इसी मेडिसन में, मेडिसन के फील्ड में कैंसर जो है एक मेजर टॉपिक है रिसर्च का। तो इसका जो जदीद ये है कि मतलब डिफरेंट टाइप की इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिपेंड करता है कि कैंसर की टाइप क्या है या ट्यूमर जो है वो किस टाइप का है। मतलब अगर वो मसलन हमें, जब हम ट्यूमर्स को देखते हैं तो हम उसकी ग्रेडिंग होती है डिफरेंट, यानी कि ग्रेडिंग का मतलब है कि वो डिवेलप कितना कर रहा है। मसलन एक ट्यूमर है, वो डिवेलप होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो स्टॉप हो गया, तो वो लो ग्रेड है। अगर वो एक मसलन एक ट्यूमर डेवलप होना स्टार्ट हुआ उसके बाद वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, तो ये हाई ग्रेड है। तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। जो मैं आपको अब ट्रीटमेंट का बता रही हूँ कि ट्रीटमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मुनहसर किस चीज़ पे है जो पेशेंट की है। सेकेंडली जो है ये डिपेंड करता है कि जो आपका ट्यूमर है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। मसलन जो बच्चे हैं उनके अंदर जो भी ट्यूमर होता है वो प्राइमरी होता है। प्राइमरी ट्यूमर ये होता है कि वो एक जगह से बनना स्टार्ट हुआ, मसलन दिमाग में वो बन गया, उसके बाद वो जो है किसी और जगह शिफ्ट होगा, लेकिन वो प्राइमरी उसका जो ओरिजिन है वो दिमाग है ब्रेन ट्यूमर का। इसी तरह ये डिपेंड करता है कि वो बेनाइन है या फिर मेलिग्नेंट है। तो ये तीन तरह की एक स्केलिंग्स हैं, या समझ लें कि हम ये देखते हैं कि उसका ग्रेड क्या है ट्यूमर का, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, इस पे फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले जब एक डायग्नोज हो गया वाज़ह तौर पे कि इसको अब ब्रेन ट्यूमर है, बेशक वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, फर्स्ट जो उसकी बच्चों के अंदर, क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है कि उसमें सेकेंडरी ट्यूमर हो, तो उसकी जो फर्स्ट थेरेपी कह लें या ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। आप सर्जरी करें और जो है रिमूव कर दें ट्यूमर को। जब सर्जरी हो जाती है, वंस सर्जरी इज़ डन, तो उसके बाद आपकी कीमोथेरेपी का सेगमेंट आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि कैंसर की कोई भी जो ट्यूमर है उसमें आप जस्ट सर्जरी करेंगे ख़त्म, इस तरह नहीं है। उसके बाद आपको कीमोथेरेपी करनी है, और उसके बाद फिर जो थर्ड है वो रेडियोथेरेपी भी है। रेडियोथेरेपी उन केसेस में होती है जो अगर ट्यूमर बेनाइन का मतलब वो एक जगह पे है, एक और आपका दिमाग है उसके अंदर एक जगह पे बन गया ट्यूमर, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और आपने उसको रिमूव कर दिया, ये बेनाइन है। लेकिन अगर वो आपके बाकी ऑर्गन्स में फैलना स्टार्ट हो जाए तो ये मैलिग्नेंट है। तो अगर वो फैल रहा है, देर आर चांसेस के वहाँ पे ये फैल जाएगा बाकी, मसलन दिमाग के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना
जी।
अगर मसलन सेरिबलम में है तो मिडल्ला में है, ब्रेन स्टेम में है, तो वो ब्रेन स्टेम से मिडल्ला में शिफ्ट हो जाएगा, मिडल्ला से सेरिबलम में चला जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाएगा। तो आगे से इसके डिफरेंट नाम होते हैं इन्हीं पार्ट्स की बेस पे। तो इसलिए फिर हम ये देख उन केसेस में रेडियोथेरेपी करते हैं उन बच्चों की जिनमें ये चांस होता है कि वो किसी दूसरे साथ वाले जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर शिफ्ट ना हो जाए, मिलिग्नेंसी ना उसमें आ जाए, तो फिर रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है ताकि वो सेल जो हैं, समझ लें हम सेल्स को जला देते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होते हैं उनको रेडिएशन के थ्रू ख़त्म कर देते हैं। आपने वेल्डिंग देखी होगी, वेल्डिंग जैसे जब वो हम करते हैं वो वहाँ से जुड़ जाती है चीज़, आगे स्प्रेड नहीं होती, तो रेडिएशंस भी ऐसे ही होती हैं, रेडियोथेरेपी भी जो है वो सेल जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है, नॉर्मल ग्रोथ, उनको स्टॉप कर देती है, उनको जला देती है सेल्स।
किस हद तक कामयाबी हासिल होती है इस
ब्रेन ट्यूमर्स में? डिपेंड, हर एक ट्यूमर में इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर डिपेंड करता है कि जो ग्रेड क्या है ट्यूमर का या फिर स्टेज क्या है। आपने सुना होगा, हम सुनते हैं कि वो पेशेंट लास्ट स्टेज पे था, वो फर्स्ट पे था, सर्वाइवल का चांस होता है पहली पे, दूसरी पे। इसी तरह से जितना जितना स्टेज आगे जाई जा रही है तो सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है।
अच्छा, इसमें ये होता है क्या, मैं यानी आखिरी सवाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ कि वक्त हम लोगों के पास कम ही रह गया है, कि मिसाल के तौर पर ठीक हो गए और यानी वो सारी रेडियोथेरेपी ये सब भी हो गई, तो उसके बाद इस बात का क्या इम्कान होता है कि मिसाल के तौर पर ये फिर से उभर आए, फिर से सामने आ जाए?
बिल्कुल ऐसा इम्कान होता है, रीग्रोथ हो जाती है ट्यूमर्स की, और इसके बहुत चांसेस भी होते हैं। डिपेंड करता है कि ट्यूमर की स्टेज क्या थी। इस पे मुनहसर करते हुए हम असल में जब किसी भी किस्म का ट्यूमर या कैंसर होता है तो हम उसको स्टेज में डिवाइड करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम कहेंगे कि इसकी स्टेजिंग है पेशेंट की, सर्वाइवल है, क्योर नहीं है। सर्वाइवल और क्योर में भी डिफरेंस है। सर्वाइवल का मतलब है कि मसलन 100% सर्वाइवल का ये मतलब है कि वो सारे पेशेंट जिन्हें हमने ट्रीट किया वो 5 साल तक जिंदा रहेंगे बिल्कुल ठीक। उसके बाद देर आर चांसेस के वो मेलिग्नेंसी में भी जा सकता है और अगर बच जाए तो भी ठीक है, लेकिन कभी भी जो ट्यूमर होता है या कैंसर होता है उसकी सर्वाइवल रेट होता है, उसकी क्योर रेट नहीं होता है।
बच्चों में इम्कान ज़्यादा होता है बचने का?
बच्चों में बल्कि इम्कान कम होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोग, क्योंकि उनकी कह लें कि विल पावर कम होती है कि उसको वो कर सकें, बर्दाश्त कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और अहम मौजू की जानिब आपने इशारा किया, और इंशाल्लाह के कभी भी पेश ना आए किसी के लिए, लेकिन बहरहाल इब्तदाई और ज़रूरी मालूमात थी जो मेरे ख्याल में हम लोगों का फ़र्ज़ था कि आपके सामने पेश करें। शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर फ़ायज़ा मुमताज़ का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ।